सत्य क्या है? नंबर एक,
सत्य का ढांचा, प्रकाशित वाक्य, भविष्यवाणी की समानताएं और अल्फा और ओमेगा।
सत्य क्या है विषय पर आने से पहले हम ये नोट करते हैं कि हमने इस अध्ययन की शुरुआत प्रकाशित वाक्य के प्रथम अध्याय की पहली तीन आयतों से की और उसके बाद एलिया के बारे में एक लेख जोड़ा। इन अध्ययनों के कुछ उद्देश्य हैं: भविष्यवाणी में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका की पहचान करना, यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य के संदेश को उद्घाटित करना, परमेश्वर की प्रजा के प्रतीकों के रूप में नबियों की भूमिका को पहचानना और इस पर विचार करना कि यीशु के अल्फा होने का क्या अर्थ और क्या निहितार्थ है। हमने ये दर्शाया कि प्रकाशित वाक्य की पहली तीन आयतें प्रकाशित वाक्य की अंतिम आयतों से मेल खाती और सामंजस्य रखती हैं और दोनों ही स्थानों पर आरंभ में और अंत में यीशु स्वयं को अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, पहला और अंतिम के रूप में पहचानते हैं। हमने दूसरे अध्ययन में एलिया पर संक्षिप्त चर्चा इसलिए की कि ये दिखाया जा सके कि बाइबल की प्रारंभिक आयतें पुराने और नए दोनों नियमों की समापन आयतों से मेल खाती हैं और आगे ये भी कि नए नियम की प्रारंभिक आयतें भी बाइबल को आप चाहे समग्र रूप में देखें या दो नियमों के रूप में उसके आरंभ या अंत से मेल खाती हैं।
एक और बात जिसे हम स्पष्ट करना चाहते हैं वह ये समझ है कि परमेश्वर ने इतिहास भर में अपने ईश्वरत्व को धीरे धीरे प्रकट करने का काम किया है। इसी कारण हमने ध्यान दिया है कि जैसे जैसे बाइबल की वाचा इतिहास की धारा आगे बढ़ती गई, परमेश्वर ने अपने विभिन्न नामों के प्रतीकवाद के माध्यम से अपने स्वभाव को क्रमशः अधिक अधिक प्रकट किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और उसी परमेश्वर ने मूसा से भी बात की, परंतु मूसा को ये बताया कि उस समय से आगे उसका नाम यहोवा के रूप में जाना जाएगा। फिर जब मसीह आए तो उन्होंने अपना परिचय ऐसे नाम से दिया जो पुराने नियम में अज्ञात था, सिवाय इसके कि दानियल के तीसरे अध्याय में एक बाबुलवासी ने उस नाम का एक उल्लेख किया है। न केवल यीशु ने ये घोषित किया कि वो पिता का इकलौता पुत्र है, बल्कि उसी विशेष वाचा इतिहास में उसने अपने को मनुष्य का पुत्र भी बताया। परमेश्वर ने एडवेंटवाद के प्रारंभ में वाचा बांधते समय मिलरवादी एडवेंटवाद को एक नाम भी दिया।
इस समय जब हम अंत के इतने निकट हैं, क्या हम व्यवहार में संसार के इतने समान हो जाएं कि लोग परमेश्वर की कहलाई हुई प्रजा को खोजने के लिए व्यर्थ ढूंढते रह जाएं? क्या कोई व्यक्ति संसार द्वारा दिए जाने वाले किसी लाभ के लिए परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के रूप में हमारी विशिष्टताओं को बेच देगा? क्या परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों की कृपा को बहुत मूल्यवान माना जाएगा? क्या जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा कहा है वे ये मानेंगे कि महान मैं हूँ से बढ़कर कोई शक्ति है? क्या हम उस विश्वास के वे विशिष्ट बिंदु मिटाने का प्रयास करेंगे जिन्होंने हमें सातवें दिन के एडवेंटिस्ट बनाया है? एवेंजेलिज्म 12 पॉइंट।
सेवंथ डे एडवेंटिस्ट ऑन ही को जो नाम दिया गया वो प्रभु ने दिया था, और बहन व्हाइट अक्सर एडवेंटिस्टों को परमेश्वर के नामित लोग कहती हैं। डिनोमिनेटेड का अर्थ है नाम दिया जाना। वे केवल दो कलीसियाएं जिन्हें बहन व्हाइट परमेश्वर के नामित लोग के रूप में पहचानती हैं, प्राचीन इसराइल और आधुनिक इसराइल है। अतः प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के हमारे अध्ययन में आगे बढ़ते हुए मेरा सुझाव है कि नया नाम जो फिलाडेल्फियों को प्रकट किया जाता है, जिन्हें 144,000 के रूप में भी दर्शाया गया है, वह उस भविष्यवाणी के रहस्य का एक बड़ा हिस्सा है जो अनुग्रह काल बंद होने से ठीक पहले उद्घाटित किया जाता है।
जो विजयी होगा उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर नहीं जाएगा, और मैं उस पर अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर का नाम जो नया यरूशलेम है, जो मेरे परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से नीचे उतरता है, लिखूंगा, और मैं उस पर अपना नया नाम लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 3:12-13।
अंतिम चेतावनी का संदेश यीशु मसीही के प्रकटीकरण का संदेश है और ये उनके चरित्र का एक प्रकटीकरण है।
जो दूल्हे के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें लोगों से कहना है, देखो तुम्हारा परमेश्वर। दया की रोशनी के अंतिम किरणें अर्थात संसार को दिया जाने वाला दया का अंतिम संदेश, उसके प्रेममय चरित्र का एक प्रकाशन है। परमेश्वर की संतान को उसकी महिमा प्रकट करनी है। अपने जीवन और चरित्र में उन्हें ये प्रकट करना है कि परमेश्वर के अनुग्रह ने उनके लिए क्या किया है। क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन्स 414-616।
यीशु के वचन होने के विषय में अभिलेख में और भी बहुत कुछ दर्ज करना शेष है, पर अब हम सत्य शब्द पर विचार करेंगे। सत्य की समझ, सत्य शब्द की समझ और सत्य का वचन बनाने में प्रयुक्त अक्षरों की समझ, यह सब मसीह के चरित्र की समझ है।
तब पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैं इसीलिए जन्मा हूं और इसी कारण जगत में आया हूं कि मैं सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरी आवाज सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? और ये कहकर वो फिर बाहर यहूदियों के पास गया और उनसे कहा, मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यूहन्ना 18:37-38।
उस पद में सत्य के रूप में अनुवादित यूनानी शब्द एक ऐसे हिब्रू शब्द से लिया गया है जो एक अक्षर भी है और यहां तक कि एक संख्या भी। हिब्रू वर्णमाला का पहला अक्षर अलेफ है। वास्तव में हिब्रू वर्णमाला के पहले दो अक्षर अलेफ और बेथ है और वे यूनानी के पहले दो अक्षरों जो अल्फा और बेटा हैं से बहुत मिलते जुलते हैं। मिलकर वे अल्फाबेट शब्द का मूल बनाते हैं। इस प्रकार अल्फा शब्द हिब्रू अक्षर अलेफ से एक अक्षर, एक शब्द, एक संख्या के रूप में और साथ ही यीशु के अनेक नामों में से एक के रूप में भी प्रयोग होता है। जब पिलट ने ये प्रश्न पूछा, सत्य क्या है, तब यीशु पहले ही उसे बता चुके थे कि उसका संसार में आना और उसका जन्म लेना दोनों का कारण सत्य की गवाही देना था। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जो कोई सत्य का है वो उसकी आवाज सुनता है।
धन्य है वो जो पढ़ता है और वे जो इस भविष्यवाणी के वचन सुनते हैं और जो उसमें लिखी हुई बातों का पालन करते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रकाशित वाक्य 1:4
सत्य G225 G227 से सत्य, सच्चा, X सचमुच, सत्य, सत्यता, G227 G1 निषेधात्मक अव्यय के रूप में और G2990 से सत्य जो छिपाता नहीं, सच्चा, सचमुच, सत्य, G1 इब्रानी मूल का वर्णमाला का पहला अक्षर केवल रूपक रूप में अंकियोपयोग से प्रथम अल्फा।
यीशु ने उससे कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। कोई भी व्यक्ति पिता के पास नहीं आता परंतु मेरे द्वारा ही। यूहन्ना 14:6।
जब यीशु ने कहा मैं सत्य हूं, तो उनका आशय था कि वे एक अक्षर, एक संख्या और एक शब्द है, क्योंकि अल्फा नामक अक्षर, अल्फा शब्द और अल्फा संख्या, ये सब सत्य है। दानियेल की पुस्तक में मसीह ने अपने आप को अद्भुत गणक के रूप में प्रकट किया, जो हिब्रू शब्द पालमुनी की परिभाषा है, जिसका अनुवाद दानियेल अध्याय 8 में वह निश्चित संत जिसने कहा के रूप में किया गया है।
तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना और दूसरे पवित्र जन ने उससे जो बोल रहा था कहा, नित्य बलिदान और उजाड़ के अपराध के विषय का ये दर्शन कब तक रहेगा कि पवित्र स्थान और सेना दोनों पद दलित किए जाएं? और उसने मुझसे कहा, 2300 दिन तक, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। दानियेल 8:13-14।
13वें पद में जो एक पवित्र जन है वो पालमोनी है, अद्भुत गणक या रहस्यों का गणक। इन दो पदों में ही 3300 वर्षों की भविष्यवाणी और 2200 वर्षों की दो भविष्यवाणियां प्रतिपादित हैं। 3300 वर्ष पवित्र स्थान से संबंधित है और 2200 वर्षों की दो भविष्यवाणियां सेना से संबंधित हैं, क्योंकि पवित्र स्थान और सेना दोनों को रोम द्वारा रौंदा जाना था। 2200 वर्षों की भविष्यवाणी ईश्वर के पवित्र स्थान और लोगों के रौंदे जाने का प्रतिनिधित्व करती है, बाइबल के ठीक उसी स्थान पर जहां यीशु अपने को रहस्यों के अद्भुत गणक के नाम से कराते हैं। समय पर आधारित तीन गहन परस्पर संबद्ध भविष्यवाणियां प्रस्तुत है। बात केवल इतनी नहीं है कि उन्होंने अपने को समय के स्वामी के रूप में परिचित कराने के लिए इन्हीं दो पदों को चुना, बल्कि जिन दो पदों में वे अपने को प्रकट करते हैं वही उस समय की पहचान कराते हैं जब वे आधुनिक आध्यात्मिक इसराइल के साथ वाचा में प्रवेश करेंगे। वो वही दो पद एडवेंटिज्म की नींव और केंद्रीय स्तंभ भी है।
वह शास्त्र जो अन्य सभी से बढ़कर एडवेंच विश्वास की नींव और केंद्रीय स्तंभ रहा था, ये घोषणा थी 2300 दिन तक तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। दानियल 8 ही दिन तक, महान विवाद 4:9-3।
1798 में अंत के समय द दानियल की पुस्तक की मुहर खोली गई और पहले स्वर्गदूत का संदेश इतिहास में प्रकट हुआ, जिससे मिलराइट आंदोलन के समय हुई भविष्यवाणी ज्ञान की वृद्धि चिह्नित हुई, जो सातवें दिन के एडवेंटिस्ट आंदोलन की शुरुआत थी। जब मिलराइटों के लिए दानियल की पुस्तक की मुहर खोली गई, तब पलमोनी से एक संदेश, समय का संदेश समझा गया। परमेश्वर का वचन कभी विफल नहीं होता और वो हमेशा अंत को आरंभ से संबद्ध करता है। इसलिए एडवेंटिस्ट आंदोलन के अंत में भी निश्चय ही उसके चरित्र का एक प्रकटीकरण होगा, जैसा कि मिलराइट इतिहास में था। ये तथ्य एडवेंटिस्ट आंदोलन के आरंभ और अंत पर आधारित है और ये दानियल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के घोषित संबंध पर भी आधारित है। दानियल और प्रकाशित वाक्य एक ही पुस्तक का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस प्रतिनिधित्व में वे दो गवाह हैं, पहला दानियल और अंतिम प्रकाशित वाक्य।
दानियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तकें एक हैं, एक भविष्यवाणी है, दूसरी प्रकटीकरण। एक पुस्तक मोहरबंद, दूसरी पुस्तक खुली। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट बाइबल कमेंट्री, खंड 7, ना 62।
दानियल और प्रकाशित वाक्य दो पुस्तकें हैं जो मिलकर एक ही पुस्तक है, उसी तरह जैसे बाइबल एक ही पुस्तक है जो पुराने और नए या आरंभ और अंत में विभाजित है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में मूसा और एलिया के रूप में प्रस्तुत किए गए दो गवाह पुराना और नया नियम है।
दो गवाहों के विषय में भविष्यद्वक्ता आगे घोषित करता है, ये पृथ्वी के परमेश्वर के सामने खड़े दो जैतून के वृक्ष और दो दीवट हैं। 13 वचन, वचनकार ने कहा, मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। प्रकाशित वाक्य 11:4, भजन संहिता 101:8-5। ये दो गवाह पुराने और नए नियम के पवित्र शास्त्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महान विवाद 66।
दानियल और यूहन्ना दो गवाह, दोनों सताए गए, दोनों बंदी बनाए गए, दोनों को एक ही भविष्यवाणी संबंधी इतिहास को लिपिबद्ध करने का कार्य दिया गया। दोनों 144,000 का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों यरूशलेम के विनाश के बाद के समय में जीवित थे और दोनों मृत्यु और पुनरुत्थान के प्रतीक हैं। यूहन्ना उबलते तेल से और दानियल सिंचों की मांत से। दानियल मसीह के चरित्र के एक विशेष प्रकाशन की पहचान करता है और वो ऐसा उन दो पदों में करता है जिन्हें प्रेरणा सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया का केंद्रीय स्तंभ और नींव करती है। वे दो पद शिरोशिला थे, वह अंतिम पत्थर जो उन नींवों पर रखा गया जिन्हें विलियम मिलर के कार्यों द्वारा दर्शाया गया था। उस शिरोशिला के साथ स्वर्गीय पवित्र स्थान, परमेश्वर की व्यवस्था, विश्राम दिन, जांच पड़ताल के न्याय और प्रकाशित वाक्य 14 के तीन स्वर्गदूतों की समझ आई। दानियल पुस्तक की शुरुआत है, यूहन्ना उसका अंत। यूहन्ना का लेखन एडवेंटवाद के अंत में मसीह के चरित्र के एक प्रकटीकरण को इंगित करेगा। आधुनिक इसराइल की शुरुआत में उसने स्वयं को अद्भुत गणक के रूप में प्रकट किया जो हर गणितीय तत्व का सृजन करता है, और आधुनिक इसराइल के अंत में वो स्वयं को अद्भुत भाषाविद के रूप में प्रकट कर रहा है। वो भाषा से संबंधित हर चीज का सृजन करता है, चाहे वो भाषा की संरचना हो, व्याकरणिक नियम हो, शब्द हो, और यहां तक कि वर्णमाला के अक्षर भी। उसी ने वो संप्रेषण रचा जो शब्दों द्वारा संपन्न होता है, जो लिखित हो या मौखिक, व्याकरणिक नियमों से संचालित और ऐसी वर्णमाला से लिखा जाता है जो उसकी ही अभिकल्पना के अनुसार है। और इन सब से बढ़कर वो वचन है, उसी वचन द्वारा वो अंधे अप्रस्तुत लाओदिकियाइयों को पवित्रीकृत फिलाडेल्फियाइयों में बदल देता है।
उन्हें तेरे सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17।
सैंक्टिफाई के रूप में अनुवादित शब्द का अर्थ है पवित्र बनाना। 144,000 पवित्र होंगे और वे उस चरित्र की अवस्था को सत्य के द्वारा, या यूं कहें उसके वचन के द्वारा प्राप्त कर चुके होंगे, क्योंकि यीशु वचन है और वही सत्य है।
आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से एक भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यूहन्ना 1:1-3।
ध्यान दें कि ये वो पहली बात है जो यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखता है। ये स्वाभाविक रूप से उत्पत्ति में लिखी गई पहली बात के समानांतर है। ये गवाही में और जोड़ता है जो उत्पत्ति अध्याय 1 में कहा गया है, उसे और स्पष्ट करता है।
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:10।
पहले पद में परमेश्वर के रूप में अनुदित शब्द बहुवचन है, इसलिए आदि से ही ये स्पष्ट होता है कि परमेश्वर एक से अधिक है। यूहन्ना के सुसमाचार में आदि में वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन ही सृष्टि करता था। यीशु वचन है, और उन्होंने दिव्यता को मनुष्यता के साथ मिलाकर, जहां दिव्यता का प्रतिनिधित्व पवित्र आत्मा करता है, और मनुष्यता उन व्यक्तियों में थी जिन्होंने उन पुस्तकों में शब्द लिखे जो कलीसियाओं को भेजी जानी थी, बाइबल उत्पन्न की। इस प्रकार बाइबल भी जैसे यीशु मनुष्यता और दिव्यता का संयोजन है। पतित शारीरिक मनुष्यों की सहभागिता के बावजूद बाइबल पवित्र है, और जिन्होंने इसे लिखा वे पुरुष भी पवित्र थे।
और हमारे पास भविष्यवाणी का और भी दृढ़ वचन है, जिस पर ध्यान देना। तुम भली बात करते हो जैसे अंधेरी जगह में चमकने वाले दीपक पर, जब तक कि दिन न निकल आए और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में उदय न हो जाए। ये पहले जान लो कि शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी निजी व्याख्या से नहीं होती, क्योंकि भविष्यवाणी कभी भी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, परंतु परमेश्वर के पवित्र मनुष्यों ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बातें कहीं। 2 पत्रस 1:39-45।
यद्यपि भविष्यवक्ता पवित्र पुरुष थे, फिर भी वे पतित मनुष्य ही थे, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। फिर भी बाइबल दिव्यता और मानवता का मेल है, और वो पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अपने जीवन में और अपने लिखित वचन में ये प्रदर्शित करने आया कि दिव्यता से संयुक्त मानवता पाप नहीं करती। बाइबल के विषय में जो सत्य है, वही मसीह के विषय में भी सत्य है, क्योंकि वो बाइबल है। यीशु ने पापमय देह धारण की और कभी पाप नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि दिव्यता के साथ संयुक्त मानवता पाप नहीं करती।
बेतलहम की कथा एक अक्षय विषय है। उसमें परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान दोनों के धन की गहराई छिपी हुई है। रोमियो 11:33। हम उद्धारकर्ता के उस बलिदान पर चकित होते हैं कि उन्होंने स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर चरनी को और आराधना करने वाले स्वर्गदूतों की संगति छोड़कर टबेले के पशुओं का साथ स्वीकार किया। उनकी उपस्थिति में मानवीय घमंड और आत्मपर्याप्तता ताड़ना पाती है, फिर भी ये उनकी अद्भुत दीनता का केवल आरंभ भर था। ये परमेश्वर के पुत्र के लिए मनुष्य का स्वभाव ग्रहण करना लगभग असीम दीनता होती, यहाँ तक कि तब भी जब आदम एदन में अपनी निर्दोषता में खड़ा था। परंतु यीशु ने मानवता को तब स्वीकार किया जब मानव वंश 4,000 वर्षों के पाप से दुर्बल हो चुका था। आदम की हर संतान की तरह उन्होंने आनुवंशिकता के महान नियम के कार्य के परिणामों को स्वीकार किया। ये परिणाम क्या थे, ये उनके सांसारिक पूर्वजों के इतिहास में प्रकट होता है। वे ऐसी ही आनुवंशिक विरासत के साथ हमारे दुखों और प्रलोभनों में सहभागी होने और हमें निष्पाप जीवन का उदाहरण देने आए। युगों की अभिलाषा 48।
यीशु वचन है, और यीशु तथा बाइबल दोनों में मानवी और दिव्य तत्वों का संयोग है। जब यीशु ने सदियों के दौरान बाइबल का निर्माण किया, तो उन्होंने उसके भीतर ऐसे नियम स्थापित किए ताकि जो सुनने वाले हैं वे सुन सकें। बाइबल को संचालित करने वाले ये नियम उनके चरित्र के गुण भी है।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बाइबल की सभी पुस्तकें मिलती हैं और समाप्त होती हैं। यहाँ दानियेल की पुस्तक का पूरक मिलता है। प्रेरितों के काम 5:47।
कॉम्प्लीमेंट शब्द का अर्थ है किसी बात को परिपूर्ण करना। दानियेल की गवाही का समापन प्रकाशित वाक्य में होता है। इस प्रकार दानियेल आरंभ और प्रकाशित वाक्य अंत ठहरते हैं। प्रकाशित वाक्य का आरंभ उसके अंत में पुनः दोहराया गया है, और दानियल अध्याय 1 की पहली आयत में शाब्दिक इसराइल और शाब्दिक बाबेल के बीच युद्ध होता है, जिसमें बाबेल जीतता है, परंतु अनुग्रह काल के निष्कर्ष पर दानियल 11:45 12 ओस आध्यात्मिक बाबेल का आध्यात्मिक इसराइल से युद्ध होता है और अंत में बाबेल हारता है और इसराइल विजयी होता है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के साथ है, वैसे ही दानियल की गवाही का आरंभ उसकी गवाही के अंत से मेल खाता है। तो सत्य क्या है?
सिद्धांत वो शब्द है जो ये बताता है कि विश्वासियों का एक समूह किसे सही समझता है। इसका उद्देश्य या उपयोग बाइबल या ईसाई धर्म तक सीमित नहीं है। कथित ईसाई धर्म में झूठे सिद्धांत संभवतः सच्चे सिद्धांतों से अधिक है, क्योंकि आत्मिक बाबुल यानी पोपतंत्र हर अशुद्ध और घृणित पक्षी का पिंजरा है, और वे पक्षी बुराई का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे कलीसियाएं झूठे सिद्धांतों के द्वारा बनाए रखती हैं और ढकती हैं, जैसे कि व्यवस्था रद्द कर दी गई है। परंतु सच्चा सिद्धांत भी है।
बिरिया के लोगों के मन पूर्वाग्रह से संकुचित नहीं थे। वे प्रेरितों द्वारा प्रचारित शिक्षाओं की सत्यता की जांच करने के लिए तैयार थे। वे बाइबल का अध्ययन जिज्ञासा से नहीं बल्कि इसलिए करते थे कि वे जान सकें कि प्रतिज्ञात मसीहा के विषय में क्या लिखा गया है। प्रतिदिन वे ईश्वरीय प्रेरणा से लिखे धर्म ग्रंथों का अन्वेषण करते थे, और जब वे शास्त्र की शास्त्र से तुलना करते थे तो स्वर्गदूत उनके पास रहते, उनके मन को प्रकाशित करते और उनके हृदयों पर गहरा प्रभाव डालते। जहाँ कहीं भी सुसमाचार के सत्य प्रचारित किए जाते हैं, वहाँ जो लोग ईमानदारी से सही करना चाहते हैं, जहाँ वे पवित्र शास्त्रों की लगन से खोज पड़ताल करने के लिए प्रेरित होते हैं, यदि इस पृथ्वी के इतिहास के अंतिम चरणों में जिनके सामने परखने वाली सच्चाइयाँ रखी जाती हैं, वे बेरिया के लोगों का उदाहरण अपनाएं, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों की खोज करें और उन्हें मिले संदेशों की परमेश्वर के वचन से तुलना करें, तो आज परमेश्वर की व्यवस्था की आज्ञाओं के प्रति निष्ठावान लोगों की संख्या बहुत अधिक होती, जहां अब तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। पर जब अलोकप्रिय बाइबल की सच्चाइयां प्रस्तुत की जाती हैं, तो बहुत से लोग ये जांच पड़ताल करने से इनकार कर देते हैं। शास्त्र की स्पष्ट शिक्षाओं का खंडन न कर पाने पर भी वे प्रस्तुत किए गए प्रमाणों का अध्ययन करने में अत्यधिक अनिच्छा दिखाते हैं। कुछ लोग मान लेते हैं कि यदि ये सिद्धांत सचमुच सत्य भी हों, तब भी ये बहुत मायने नहीं रखता कि वे नया प्रकाश स्वीकार करें या नहीं, और वे उन लुभावनी कथाओं से चिपके रहते हैं जिनका प्रयोग शत्रु आत्माओं को भटकाने के लिए करता है। इस प्रकार उनके मन भ्रांति से अंधे हो जाते हैं और वे स्वर्ग से अलग हो जाते हैं। सभी का न्याय उस ज्योति के अनुसार होगा जो उन्हें दी गई है। प्रभु अपने दूतों को उद्धार का संदेश लेकर भेजता है, और जो सुनते हैं उसके सेवकों के वचनों के साथ वे जैसा व्यवहार करते हैं उसके लिए वो उन्हें उत्तरदायी ठहराएगा। जो सच्चे मन से सत्य की खोज कर रहे हैं, वे उन्हें प्रस्तुत किए गए सिद्धांतों की परमेश्वर के वचन के प्रकाश में सावधानी पूर्वक जांच करेंगे। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 281-232।
ऐसे सिद्धांत है जो हमाचार के सत्य है और उनकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। कुछ यदि सभी नहीं परीक्षणकारी सत्य है। विश्राम दिन एक ऐसा परीक्षणकारी सत्य है जिसे समझना आसान है। सच्चे और झूठे सिद्धांत होते हैं। सच्चे सिद्धांतों में से कुछ उन्हें सुनने वालों के लिए एक परीक्षा प्रस्तुत करते हैं। एक प्रकार का सत्य भी है जो किसी विशेष समयावधि के लिए नियत किया गया है। इन सत्यों को वर्तमान सत्य कहा जाता है।
परमेश्वर के वचन में अनेक बहुमूल्य सत्य निहित हैं, परंतु अभी मंडली को वर्तमान सत्य ही चाहिए। मैंने ये खतरा देखा है कि संदेशवाहक वर्तमान सत्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं से भटककर ऐसे विषयों पर ठहर जाते हैं जो न तो मंडली को एक करने के लिए उपयुक्त हैं और न आत्मा को पवित्र करने के लिए। यहाँ शैतान कार्य को हानि पहुँचाने के लिए हर संभव अवसर का लाभ उठाएगा। परंतु पवित्र स्थान 2300 दिनों के संबंध में परमेश्वर की आज्ञाएं और यीशु का विश्वास जैसे विषय भूतकाल के एडवेंट आंदोलन की व्याख्या करने और ये दिखाने के लिए कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, संदेह करने वालों के विश्वास को दृढ़ करने और महिमामय भविष्य के विषय में निश्चितता देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। ये जैसा कि मैंने अक्सर देखा है, वे प्रमुख विषय थे जिन पर संदेशवाहकों को विस्तार से बोलना चाहिए। प्रारंभिक लेखन तीसरे स्तर।
एडवेंटिस्ट अक्सर इस अंश का उपयोग इस बात से बचने के लिए करते हैं कि ये वास्तव में क्या कहता है। वे तर्क देते हैं कि हमारे वर्तमान सत्य के संदेशों में जिस पर जोर दिया जाना चाहिए वो केवल पवित्र स्थान, दो सत्री दिन, आज्ञाएं और यीशु का विश्वास है। वे ये दावा इसलिए करते हैं ताकि इन चार विषयों के बारे में जो बताया गया है उससे बच सके। इन चार महान सत्यों का उद्देश्य ये है कि वे भूतपूर्व एडवेंट आंदोलन की व्याख्या करने, ये दिखाने कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, संदेह करने वालों का विश्वास स्थापित करने और गौरवशाली भविष्य के प्रति निश्चितता देने के लिए सटीक रूप से निर्धारित किए गए हैं। ये चार वर्तमान सत्य के सिद्धांत इस बात को दिखाने के लिए बनाए गए हैं कि एडवेंटवाद की शुरुआत, पूर्ववर्ती एडवेंट आंदोलन, एडवेंटवाद के अंत हमारी वर्तमान स्थिति को दर्शाती है। वे चार प्रमुख सिद्धांत इस सिद्धांत को समझाने के लिए सटीक रूप से निर्धारित है कि अंत का चित्रण प्रारंभ द्वारा होता है। प्रेरणा के इस अनुच्छेद के अनुसार यही वो वर्तमान सत्य है जिसकी झुंड को अभी आवश्यकता है। प्राचीन इसराइल इसराइल की शुरुआत है और आधुनिक इसराइल उसका अंत। प्राचीन शाब्दिक इसराइल 1798 में अंत के समय से लेकर रविवार के कानून तक सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लोगों का प्रतिरूप था। मसीही के प्रथम आगमन से पहले वर्तमान सत्य यहूदियों को दिखाई नहीं देता था क्योंकि रीति रिवाजों और परंपराओं पर उनकी निर्भरता के कारण वे अंधे लाओदिकेयाई थे।
हम उस समय को समझना चाहते हैं जिसमें हम रहते हैं। हम उसे आधा भी नहीं समझते, हम उसे आधा भी नहीं आत्मसात करते। जब मैं ये सोचता हूँ कि हमें किस भयानक शत्रु का सामना करना है और उसका सामना करने के लिए हम कितने कम तैयार हैं, तो मेरा हृदय भीतर ही भीतर कांप उठता है। इसराइल की संतानों की परीक्षाएं और मसीह के प्रथम आगमन से ठीक पहले उनका रवैया मुझे बार बार इस उद्देश्य से दिखाया गया है कि ये दर्शाया जा सके कि मसीह के दूसरे आगमन से पूर्व अपने अनुभव में परमेश्वर की प्रजा की स्थिति कैसी होगी, कि कैसे शत्रु ने यहूदियों के मनों पर अधिकार करने का हर अवसर की तलाश की और आज वो परमेश्वर के सेवकों के मनों को अंधा करने का प्रयास कर रहा है ताकि वे बहुमूल्य सत्य को पहचान न सकें। चुने हुए संदेश पुस्तक 2 तर्शहो 2।
हमारे अगले संदर्भ के अनुसार यहूदियों की दृष्टि से परमेश्वर का मूल सत्य ओझल हो गया था और यहूदियों के लिए वो मूल सत्य मिस्र से मुक्ति का इतिहास था। उस मुक्ति का इतिहास ही उनका मूल सत्य था। यही वो सत्य था जिसे उन्हें अपनी पीढ़ियों भर अपने बच्चों को सिखाने का निर्देश दिया गया था। वे असफल रहे, जैसे कि एडवेंटिज्म भी असफल रहा है। अंधे हो चुके यहूदियों के सामने सत्य प्रस्तुत करने के लिए यीशु ने सत्य को एक ढांचे में प्रस्तुत किया।
उद्धारकर्ता के समय में यहूदियों ने परंपरा और दंतकथाओं के मलबे से सत्य के बहुमूल्य रत्नों को इस प्रकार ढंग दिया था कि सच्चे और झूठे में भेद करना असंभव हो गया था। उद्धारकर्ता अंधविश्वास और लंबे समय से पाली पोसी गई भूलों का मलबा हटाने और परमेश्वर के वचन के रत्नों को सत्य के ढांचे में जड़ने के लिए आए थे। यदि उद्धारकर्ता अब हमारे पास उसी प्रकार आए जैसे वे यहूदियों के पास आए थे, तो वे क्या करते? उन्हें परंपरा और रस्म रिवाजों के मलबे को हटाने का वैसा ही कार्य करना पड़ता। जब उन्होंने यह काम किया तो यहूदी अत्यंत विचलित हो उठे। वे परमेश्वर के मूल सत्य को भुला बैठे थे, परंतु मसीह ने उसे फिर से सामने ला दिया। परमेश्वर के बहुमूल्य सत्यों को अंधविश्वास और भूलों से मुक्त करना हमारा कार्य है। महिमामय सत्य दृष्टि से ओझल कर दफना दिए गए हैं और भ्रम तथा अंधविश्वास ने उनकी कांति छीनकर उन्हें अनाकर्षक बना दिया है। यीशु परमेश्वर का प्रकाश प्रकट करते हैं और सत्य की सुंदर दीप्ति को उसकी समस्त दिव्य महिमा में उजागर करते हैं। ईमानदारों के मन आदर से भर जाते हैं, उनके हृदय पवित्र स्नेह से उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं जिसने सत्य के रत्नों को प्रकट किया और उन्हें उनकी समझ के सामने प्रदर्शित किया। यहूदियों ने सत्य का कुछ अंश समझा और परमेश्वर के वचन का कुछ भाग सिखाया, परंतु वे परमेश्वर की व्यवस्था के दूरगामी स्वरूप को नहीं समझ पाए। मसीह ने परंपरागत रूढ़ियों का मलबा साफ कर दिया और परमेश्वर के उद्देश्यों के वास्तविक मर्म और सार को प्रकट किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो वे नियंत्रण से परे क्रुद्ध हो गए। उन्होंने एक नगर से दूसरे नगर तक यह झूठी खबर फैलाई कि मसीह परमेश्वर के कार्य को नष्ट कर रहे हैं। परंतु जहां यीशु ने पुराने रूपों को हटा दिया, वहीं उन्होंने प्राचीन सत्यों को फिर से प्रतिष्ठित किया, उन्हें सत्य के ढांचे में स्थापित करते हुए। उन्होंने उन्हें मिलाया और जोड़ दिया और सत्य की एक पूर्ण और संतुलित प्रणाली बना दी। ये वो कार्य था जो हमारे उद्धारकर्ता ने किया। और अब हम क्या करें? क्या हम मसीहे के साथ सामंजस्य में काम न करें? क्या हम सुन सुनाई बातों के वश में चले? क्या हम अपनी ही कल्पनाओं को परमेश्वर के प्रकाश को हमसे छिपाने दें? हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझकर सुनना है और जो कुछ हमने सीखा है उसे दूसरों को भी सिखाना है। हमें जीवन की रोटी के लिए निरंतर भूखा रहना चाहिए, सतत जीवित जल और लिबानोन के हिम की खोज में रहना चाहिए, ताकि हम लोगों को सत्य के स्रोत के जीवित शीतल जल तक ले जा सकें। रिव्यू एंड हेरॉड, 4 जून 1898।
अपने प्रथम आगमन पर यीशु ने पुराने सत्यों को फिर से स्थापित किया, उन्हें सत्य के ढांचे में भगते हुए। उन्होंने उनका परस्पर मिलान कर उन्हें आपस में जोड़ा और इस प्रकार सत्य की एक पूर्ण और सममित प्रणाली निर्मित की। यीशु ने पुराने सत्यों को फिर से स्थापित करने के लिए प्राचीन इसराइल के आरंभिक काल के इतिहास का उपयोग किया और उन्होंने ऐसा उन सत्यों का विषयवार मिलान करके तथा उन्हें समांतर रूप में रेखा पर रेखा जोड़ते हुए किया। उन्होंने ये इसलिए किया ताकि यहूदियों को उन रीति रिवाजों और परंपराओं से मुक्त किया जा सके जिन्होंने उन्हें अंधा कर दिया था। वो इतिहास प्राकृतिक इसराइल के इतिहास का अंतिम चरण था। एडवेंटिज्म प्राचीन इसराइल के अंतकालीन इतिहास को दोहरा रहा है और परंपरा व रीति रिवाज के लाओदीकियाए अंधथफ को दूर करने के लिए सत्य को रखने का जो ढांचा है उसे आज भी उसी प्रकार लागू किया जा रहा है जैसा तब जब मसीह यहूदियों से संवाद करते थे। पुराने सत्य को सत्य के ढांचे में रखा जाना है ताकि भविष्यवाणी की रेखाओं को अन्य भविष्यवाणी की रेखाओं के साथ रेखा पर रेखा समानांतर रूप में मिलाया जा सके, इस उद्देश्य से कि संभवतः किसी लाओदीकियाई को उसके अंधथफ से मुक्त किया जा सके। हर बात में मसीह हमारा आदर्श है। बाइबल में कुछ सत्य ऐसे हैं जिन्हें सिद्धांत के रूप में पहचाना जाता है और बहुत से अद्भुत सत्य भी हैं, पर वर्तमान सत्य भी है जो सत्य के प्रकट होने के समय जीवित पीढ़ी के लोगों के लिए एक परीक्षा होता है। भविष्यवाणी के अनुसार ये एडवेंटिज्म की चौथी पीढ़ी में होता है और वर्तमान सत्य जो इस पीढ़ी के लिए एक परीक्षा है एडवेंटिज्म की प्रारंभिक पीढ़ियों के लिए परीक्षा नहीं था।
शास्त्रों में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें समझना कठिन है और जिन्हें पतरस के शब्दों में अनपढ़ और अस्थिर लोग अपने विनाश के लिए तोड़ मरोड़ देते हैं। हो सकता है कि इस जीवन में हम शास्त्र के प्रत्येक अंश का अर्थ समझा न सकें, परंतु व्यवहारिक सत्य के कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे नहीं होंगे जो रहस्य के पर्दे में ढंके रहें। जब परमेश्वर के प्रविधान में वो समय आएगा कि संसार को उस समय के लिए सत्य पर परखा जाए, तो लोगों के मन उसकी आत्मा द्वारा प्रेरित किए जाएंगे कि वे शास्त्रों की खोज करें, यहाँ तक कि उपवास और प्रार्थना के साथ, जब तक कि कड़ी पर कड़ी खोजकर एक पूर्ण श्रृंखला में न जोड़ी जाए। हर वो तथ्य जो आत्माओं के उद्धार से सीधे संबंधित है इतना स्पष्ट कर दिया जाएगा कि कोई भी न भटके और न अंधकार में चले। जैसे जैसे हम भविष्यवाणियों की कड़ी का अनुसरण करते गए, हमारे समय के लिए प्रकट सत्य स्पष्ट रूप से देखा और समझाया गया है। हम उन विशेषाधिकारों के लिए जिनका हम आनंद उठाते हैं और उस प्रकाश के लिए जो हमारे मार्ग पर चमकता है उत्तरदायी है। पूर्व पीढ़ियों में जो लोग रहे वे उस प्रकाश के लिए उत्तरदायी थे जिसे उनके ऊपर प्रकट होने दिया गया था। धर्मग्रंथ के विभिन्न बिंदुओं पर उनका मन लगा और उन्हीं ने उनकी परीक्षा ली, परंतु वे सत्य नहीं समझ सके जिन्हें हम समझते हैं। जो प्रकाश उनके पास नहीं था उसके लिए वे उत्तरदायी नहीं थे। उनके पास भी बाइबल थी जैसे आज हमारे पास है, किंतु इस पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दृश्यों से संबंधित विशेष सत्य के खुलकर प्रकट होने का समय पृथ्वी पर रहने वाली अंतिम पीढ़ियों के दिनों में है। जैसी जैसी पीढ़ियां रही हैं उनकी परिस्थितियों के अनुरूप विशेष सत्य ढाले गए हैं। वर्तमान सत्य जो इस पीढ़ी के लोगों के लिए एक कसौटी है बहुत पहले की पीढ़ियों के लोगों के लिए कसौटी नहीं था। यदि चौथी आज्ञा के शब्द के संबंध में जो प्रकाश अब हम पर चमक रहा है वो पूर्वकाल की पीढ़ियों को दिया गया होता तो परमेश्वर उन्हें उस प्रकाश के लिए उत्तरदायी ठहराते। टेस्टिमोनीज खंड 2 शांतनाओ शांतनाओ।
जो लोग एडवेंटवाद के इतिहास में चार पीढ़ियों के होने से इनकार करना चाहें, मैं उन्हें हबक्कूक की तालिकाओं की ओर संकेत करूंगा। इस तथ्य को समझने का एक बहुत सरल तरीका ये है कि लाओदीकिया नाम का अर्थ है न्याय किए गए लोग। एडवेंटवाद की शुरुआत ने न्याय की शुरुआत की घोषणा की और एडवेंटवाद का अंत न्याय के समापन की घोषणा करता है। न्याय का समापन तीसरी और चौथी पीढ़ी में होता है।
तू अपने लिए कोई खुदी हुई मूर्ति ना बनाना, ना किसी ऐसी वस्तु की कोई प्रतिमा जो ऊपर आकाश में है या जो नीचे पृथ्वी पर है या जो पृथ्वी के नीचे जल में है। तू उनके आगे ना झुकना, ना उनकी सेवा करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा ईर्ष्यालु परमेश्वर हूँ, जो मुझसे बैर रखने वालों के बच्चों पर पितरों के अधर्म का दंड तीसरी और चौथी पीढ़ी तक देता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन पर हजारों तक दया करता हूँ। निर्गमन 20:4-6।
न्याय के समापन पर लाओदीकियाए एक न्यायित लोग एडवेंटवाद की अंतिम पीढ़ी का न्याय किया जाएगा और उसे प्रभु के मुख से उगल दिया जाएगा, जैसे यरूशलेमेक मुंह के विनाश के समय प्राचीन इसराइल के साथ हुआ था। बाइबल की शिक्षाएं सत्य हैं और परखने वाले सत्य भी होते हैं और फिर वर्तमान सत्य भी होते हैं। वर्तमान सत्य सदैव एक परखने वाला सत्य होता है, पर वो विशेष रूप से वर्तमान में जी रही पीढ़ी के लिए नियोजित उस परखने वाले सत्य की पहचान कराता है। तथापि असल बात यह है कि परमेश्वर के वचन का कोई भी सत्य जिसे हम अस्वीकार करना चुनते हैं उसी क्षण एक परखने वाला सत्य बन जाता है जिसमें हम अभी अभी असफल हुए हैं। यीशु परमेश्वर का वचन है और वे सत्य है। उन्होंने पीलातुस को बताया कि वो जगत में आया इसलिए कि सत्य की गवाही दे और कि जिसने भी उनकी आवाज सुनी वो सत्य का है। सत्य शब्द जिसके विषय में पीलातुस और यीशु ने बात की एक हिब्रू शब्द से आता है जिसका अनुवाद सत्य किया जाता है और जो पुराने नियम में 127 बार मिलता है। वो हिब्रू शब्द H571 विभिन्न अंग्रेजी शब्दों में अनुदित किया गया है, पर पुराने नियम में उसका अनुवाद 92 बार सत्य के रूप में हुआ है। ये उन शब्दों में से एक है जो कई स्तरों पर अत्यंत शक्तिशाली है। पुराने नियम में सत्य के रूप में अनुदित शब्द 3 हिब्रू अक्षरों से बना है और हिब्रू में अक्षरों के अपने अपने अर्थ माने जाते हैं, इसलिए उन अक्षरों से बना शब्द प्रत्येक अक्षर के संयुक्त अर्थों को मिलाकर उस शब्द का अंतिम अर्थ निर्मित करता है। सत्य शब्द 3 हिब्रू अक्षरों से बना है, हिब्रू वर्णमाला का पहला अक्षर, बीच का एक अक्षर और हिब्रू वर्णमाला का अंतिम अक्षर। पुराने नियम में सत्य का निरूपण वर्णमाला के पहले और अंतिम अक्षर के साथ बीच के एक अक्षर द्वारा किया गया है। ये बाइबलीय प्रथम उल्लेख का नियम की परिभाषा है। जब किसी विषय का पहली बार प्रस्तुतीकरण होता है तो वही उस शब्द के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ होता है। वो एक बीज के समान है और उसमें पूरी कहानी उत्पन्न करने के लिए आवश्यक सारा डीएनए निहित होता है। प्रथम उल्लेख के नियम में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ अंतिम संदर्भ होता है, क्योंकि वहीं शुरुआत और अंत के बीच उभरने वाली सभी कहानियां आपस में जुड़ जाती हैं। प्रथम प्रकाशित वाक्य में बाइबल की सभी पुस्तकों का मिलन और समापन होता है और प्रकाशित वाक्य बाइबल की अंतिम पुस्तक है। जिस हिब्रू शब्द सत्य पर हम विचार कर रहे हैं वो आलफ अक्षर से शुरू होता है। उसका 13वां अक्षर मैम है और 22वां तथा अंतिम अक्षर ताव है। बेशक इन अक्षरों की परिभाषाओं में अलग अलग सूक्ष्मताएं होती हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि परिभाषा के लिए आप किस भाषाविद की ओर रुख करते हैं, लेकिन सामान्य परिभाषाएं बहुत सूचनाप्रद होती हैं। अलेफ हिब्रू वर्णमाला का पहला अक्षर, इसे अक्सर एकता से जोड़ा जाता है और ये दैवीय तथा शाश्वत का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही ईश्वर और सृष्टि के बीच संबंध का प्रतीक है। मैम हिब्रू वर्णमाला का 13वां अक्षर है और अक्सर पानी से जुड़ा होता है। ताव हिब्रू वर्णमाला का अंतिम अक्षर और इसका अर्थ चिन्ह या निशान होता है। इसे अक्सर पूर्णता की अवधारणा या सृष्टि की मुहर से जोड़ा जाता है। प्राचीन हिब्रू में अक्षर ताव का आकार एक क्रॉस जैसा था।
हम जिस हिब्रू शब्द पर विचार कर रहे हैं, जिसका अनुवाद सत्य के रूप में किया गया है, वो तीन अक्षरों से बना है जो मिलकर अनंत सुसमाचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या यदि आप ये समझते हैं कि तीन स्वर्ग दूतों के संदेश ही अनंत सुसमाचार है, तो ये आसानी से पहचाना जा सकता है। ये इसलिए पहचाना जा सकता है क्योंकि इन तीन अक्षरों के अर्थ तीन स्वर्ग दूतों के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं।
प्रकाशित वाक्य वाक्य 14 का पहला स्वर्गदूत अनंत सुसमाचार की पहचान बताता है और फिर समस्त संसार से कहता है कि परमेश्वर का भय मानो और सृष्टिकर्ता की आराधना करके उसे महिमा दो। उन तीन अक्षरों में से प्रथम आलफ की परिभाषा ये है, दैवीय अनंत परमेश्वर और मानव जाति के सृष्टिकर्ता के रूप में वो परमेश्वर जिससे मनुष्यों को श्रद्धापूर्वक भय मानना और उपासना करना चाहिए।
अलेफ पहले स्वर्गदूत के संदेश का प्रतिनिधित्व करता है।
दूसरे स्वर्गदूत का संदेश लोगों को बाबुल से बाहर बुलाता है। ये दर्शाता है कि कब पवित्र आत्मा उंडेला जाता है और बाबुल के विद्रोह की पहचान करता है। एम की परिभाषा जल से जुड़ी है, आत्मा के उंडेले जाने का प्रतीक, और ये वर्णमाला का 13वां अक्षर है। 13 संख्या विद्रोह का प्रतीक है। इस प्रकार बाबुल की पहचान होती है। मैम दूसरे स्वर्गदूत के संदेश का प्रतिनिधित्व करता है।
तीसरा स्वर्गदूत मनुष्यों को पशु का चिन्ह ग्रहण करने के विरुद्ध चेतावनी देता है, उपासकों के दो वर्गों की पहचान करता है और परमेश्वर के क्रोध के बारे में बताता है।
ताव की परिभाषा ये है कि वो चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है, पशु का चिन्ह। ये सृष्टि की मुहर का भी प्रतिनिधित्व करता है, परमेश्वर की मुहर। ये अक्षर स्वयं क्रूस के आकार का होता है। ताव तीसरे स्वर्गदूत के संदेश का प्रतिनिधित्व करता है।
जीवित परमेश्वर की वो मुहर क्या है जो उसकी प्रजा के माथों पर लगाई जाती है? ये एक ऐसा चिन्ह है जिसे स्वर्गदूत तो पढ़ सकते हैं पर मनुष्य की आंखें नहीं, क्योंकि विनाशक स्वर्गदूत को मुक्ति का ये चिन्ह देखना आवश्यक है। बुद्धिमान मन ने प्रभु के दत्तक पुत्रों और पुत्रियों में कैलवरी के क्रूस का चिन्ह देखा है। परमेश्वर की व्यवस्था के उल्लंघन का पाप दूर कर दिया गया है। उन्होंने विवाह का वस्त्र पहना है और वे परमेश्वर की सभी आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी और विश्वास योग्य है। यदि वे वचन और कर्म से उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, तो प्रभु उन लोगों को जो सत्य को जानते हैं क्षमा नहीं करेगा। मराना था 243।
सत्य के रूप में अनुदित इब्रानी शब्द तीन अक्षरों से बना है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी परिभाषा है। वे तीनों परिभाषाएं तीन स्वर्गदूतों के संदेशों की भी परिभाषाएं हैं। वे पहले स्वर्गदूत के संदेश की भी परिभाषाएं हैं, क्योंकि पहले स्वर्गदूत का संदेश एडवेंटवाद की शुरुआत का संदेश था और तीसरे स्वर्गदूत का संदेश एडवेंटवाद के अंत का संदेश है। क्योंकि यीशु आरंभ द्वारा अंत को दर्शाते हैं, इसलिए पहला स्वर्गदूत तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के सभी भविष्यवाणी संबंधी मार्ग चिह्नों को अपने में समेटे हुए है। इस प्रकार उन तीन इब्रानी अक्षरों की परिभाषाएं न केवल तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के प्रतीक बनती हैं, बल्कि पहले स्वर्गदूत के संदेश के भी प्रतीक बनती हैं।
प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना से कहा गया कि वे उन बातों को लिखें जो उस समय थीं, और ऐसा करते हुए वे साथ ही उन बातों को भी लिख रहे होंगे जो भविष्य में होने वाली थीं। उसने अंत को स्पष्ट करने के लिए आरंभ को दर्ज किया। स्पष्ट शब्दों में सेवेंथ डे एडवेंटिस्टों को मिलराइट्स के संदेश, जो कि पहले स्वर्गदूत का संदेश है, का अध्ययन करने और उसे प्रचारित करने के लिए बताया गया है। उन सत्यों और उस इतिहास का अध्ययन और प्रचार करते हुए हम तीसरे स्वर्गदूत का संदेश प्रचारित कर रहे होंगे और पहले स्वर्गदूत के इतिहास को दोहरा रहे होंगे।
परमेश्वर हमें कोई नया संदेश नहीं दे रहे हैं, हमें उसी संदेश का प्रचार करना है जिसने 1843 और 1857 में हमें अन्य कलीसियाओं से बाहर निकाला। रिव्यू एंड हेरॉल्ड 19 जनवरी 105। एक तैयार साथ से एक तैयार साथ चापारिस तक दिए गए सभी संदेशों को अब बलपूर्वक प्रस्तुत किया जाना है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी दिशा खो चुके हैं। ये संदेश सभी कलीसियाओं तक जाने चाहिए। मैन्यूस्क्रिप्ट रिलीज खंड 21 537। वे सत्य जो हमें 1841 40 52 और 44 में प्राप्त हुए थे, अब उनका अध्ययन और प्रचार किया जाना है। मैन्यूस्क्रिप्ट रिलीजेस खंड 15 373। चेतावनी आ गई है, ऐसी किसी भी चीज को भीतर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो उस विश्वास की नींव को विचलित करें जिस पर हम 1842, 1843 और 1840 में संदेश आने के बाद से निर्माण करते आ रहे हैं। मेरा संबंध इसी संदेश से रहा है और तब से मैंने संसार के सामने परमेश्वर ने जो ज्योति हमें दी है उसके प्रति सदा निष्ठा दिखाई है। हम अपने पांव उस मंच से हटाने का कोई विचार नहीं रखते जिस पर उन्हें उस समय रखा गया था जब हम दिन प्रतिदिन गंभीर प्रार्थना के साथ प्रभु को खोजते हुए प्रकाश मांगते रहे। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने जो प्रकाश मुझे दिया है उसे छोड़ना मेरे लिए संभव है? वो युगों की चट्टान के समान अटल होना है। जब से वो दिया गया तब से वही मेरा मार्गदर्शन करता आया है। रिव्यू एंड हीरालाड 14 अप्रैल 1903।
पहले स्वर्गदूत का संदेश और वो इतिहास जिसमें वो संदेश प्रस्तुत किया गया था हमारे वर्तमान इतिहास के समानांतर चलता है और उसे कुछ भविष्य सूचक सावधानियों के साथ स्पष्ट करता है। वे दोनों इतिहास उन तीन अक्षरों द्वारा भी दर्शाए गए हैं जिन्हें दैवीय भाषाविद ने ट्रूथ शब्द बनाने के लिए प्रयुक्त किया, और वही शब्द ट्रूथ अनंत सुसमाचार का प्रतिनिधित्व करता है। एडवेंटवा की शुरुआत में मिलराइट्स का इतिहास पहले स्वर्गदूत का प्रतिनिधित्व करता है और एडवेंटवाद के अंत का तीसरे स्वर्गदूत द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया इतिहास। दोनों इतिहास समानांतर है लेकिन उनमें कुछ अंतर है। पहला स्वर्गदूत न्याय के आरंभ की घोषणा करता है और तीसरा स्वर्गदूत न्याय के समापन की घोषणा करता है। वो भविष्यवाणी संबंधी संरचना जिस पर एडवेंटवाद का इतिहास विकसित हुआ अपने आरंभिक इतिहास और अपने अंत दोनों में समान है। दोनों छोरों पर यह दिखाया जा सकता है कि इतिहास में जैसे जैसे वे तीन स्वर्गदूत आते हैं वैसे वैसे उनके तीन चरणों का अनुसरण किया जाता है, और वे तीन स्वर्गदूत वे ही तीन अक्षर भी हैं। अतः एडवेंटवाद के दोनों छोरों पर घटनाओं का भविष्यवाणी संबंधी क्रम तीन स्वर्गदूतों के तीन चरणों पर आधारित है। ऐसे मार्ग चिन्ह जिनका प्रतिनिधित्व उन तीन हिब्रू अक्षरों द्वारा भी होता है जो सत्य शब्द बनाते हैं। अल्फा एडवेंटिज्म की शुरुआत है, ओमेगा एडवेंटिज्म का अंत है, और बीच का अक्षर जो 13वां अक्षर है, इस प्रकार एडवेंटिज्म के विद्रोह को उसकी शुरुआत से उसके अंत तक चिन्हित करता है। हमें ये बताया गया है कि परमेश्वर का मार्ग कहाँ है।
हे परमेश्वर, तेरा मार्ग पवित्र स्थान में है। हमारे परमेश्वर के समान महान परमेश्वर कौन है? भजन संहिता 77:13।
पवित्र स्थान में हम पाते हैं कि परमेश्वर का मार्ग तीन स्वर्ग दूतों के संदेशों के समान तीन ही चरणों में प्रकट होता है। प्रांगण में परमेश्वर का भय मनुष्य को भेंट अर्पित करने और औचित्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। पवित्र स्थान में पवित्रीकरण को धूप की वेदी द्वारा प्रदर्शित प्रार्थना जीवन, प्रस्ताव रोटी की मेज द्वारा प्रदर्शित अध्ययन जीवन और दीवटों द्वारा प्रदर्शित सेवा जीवन के माध्यम से दर्शाया गया है। परम पवित्र स्थान न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। जब हमारे पास प्रथम स्वर्गदूत के संदेश में दर्शाया गया परमेश्वर का भय होता है तब हम प्रांगण में क्रूस के चरणों पर औचित्य की खोज करते हैं। जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं, धर्मी बनाए जाते हैं, तो हम पवित्र स्थान द्वारा दर्शाई गई पवित्रीकृत जीवन की नवीनता पवित्रता में वृद्धि में चलते हैं। पवित्र स्थान उस मसीही कार्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसे दूसरे स्वर्गदूत के संदेश के दौरान मध्यरात्रि की पुकार के साथ मिलरवादियों ने पूरा किया। धर्मी ठहराए और पवित्रीकृत होकर हम परम पवित्र स्थान द्वारा दर्शाए गए न्याय के लिए तैयार होते हैं। पवित्र स्थान के तीन चरण अन्य बातों के साथ तीन धर्मशास्त्रीय शब्दों औचित्य, पवित्रीकरण और महिमाकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, और तीन स्वर्गदूतों के संदेशों का भी, और बेशक प्रथम स्वर्गदूत के संदेश का भी, तथा बेशक सत्य शब्द बनाने के प्रयुक्त तीन अक्षरों का भी। पवित्र स्थान के प्रांगण में भी हमें वही तीनों चरण मिलते हैं। पवित्र स्थान में प्रवेश का पहला चरण पवित्र स्थान के अंतिम चरण का चित्रण होना चाहिए, जैसे पहला स्वर्गदूत तीसरे स्वर्गदूत के समानांतर है। प्रांगण का पहला चरण भेंट का वध है, जो धर्मी ठहराए जाने का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा चरण धोने के कुंड का है, जहां चर्बी पाप हटाई जाती है, और अंतिम चरणों से पहले भेंट को शुद्ध किया जाता है। धोने के कुंड का जल दूसरे चरण की विशेषता है। तीसरा चरण वास्तविक होम बलि है, जो क्रूस पर मसीह का प्रतिरूप थी, जहां न्याय संपन्न हुआ। यही तीन चरण पवित्र स्थान के पहले चरण में भी हैं, जैसे पहले स्वर्गदूत के संदेश में भी वही तीन चरण है। अल्फा और ओमेगा का सिद्धांत पवित्र स्थान के भीतर है, जैसे वो तीन स्वर्गदूतों के संदेशों में है, वैसे ही वो टूथ शब्द बनाने वाले अक्षरों में भी है।
330 वर्षीय भविष्यवाणी की संरचना उसी प्रकार की है। ये भविष्यवाणी तीन आदेशों से आरंभ की और 22 अक्टूबर 1824 को तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के आगमन पर समाप्त हुई। ये भविष्यवाणी भविष्यवाणी की पांच रेखाएं प्रस्तुत करती है और 330 वर्षीय भविष्यवाणी के आरंभ का इतिहास उन पांचों भविष्यवाणियों की समाप्ति के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्ण 330 वर्षीय भविष्यवाणी की शुरुआत में तीन आदेश हैं और ये तीन संदेशों पर आकर समाप्त होती है। 457 ईसा पूर्व में भविष्यवाणी की शुरुआत उथल-पुथल भरे समय में हुई और इसमें यहूदियों के लौटने तथा मंदिर और शहर के पुनर्निर्माण की व्यवस्था की गई। भविष्यवाणी के अनुरूप 457 ईसा पूर्व शुरू किए गए कार्य के 39 वर्ष बाद वो कार्य उथल-पुथल भरे समय में ही पूरा हुआ। 39 वर्षों की शुरुआत 39 वर्षों के अंत को दर्शाती है। 457 ईसा पूर्व उस भविष्यवाणी की शुरुआत को चिह्नित करता है जो उनके बपतिस्मा के समय मसीह के अभिषेक की ओर संकेत करती है। उनका अभिषेक उस कार्य की शुरुआत था जिसमें उन्होंने लोगों को एकत्र करना आरंभ किया ताकि वे नई नई की पुरानी यरूशलेम के नागरिक बने, ठीक वैसे ही जैसे 457 ईसा पूर्व में प्राचीन इसराइल को वास्तविक यरूशलेम के पुनर्निर्माण के लिए एकत्र किया गया था। 457 ईसा पूर्व उस भविष्यवाणी की शुरुआत को भी चिन्हित करता है जो निर्धारित करती है कि मसीह को कब क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। सिस्टर व्हाइट 22 अक्टूबर 1844 की महान निराशा के साथ क्रूस के इतिहास का मेल बिठाती है और वो लाल सागर पार करने के इतिहास का भी महान निराशा के साथ मेल बिठाती हैं। 457 ईसा पूर्व में एक निराशा हुई जो लाल सागर पर इब्रानियों की निराशा, एडवेंटिस्टों की महान निराशा, क्रूस के समय शिष्यों की निराशा और 457 ईसा पूर्व में एज्रा की निराशा का प्रतिरूप थी।
एज्रा को उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में लोग यरूशलेम लौटेंगे, परंतु आह्वान का उत्तर देने वालों की संख्या निराशाजनक रूप से कम थी। कई जिन्होंने घर और जमीन जायदाद अर्जित कर ली थी, उनमें इन संपत्तियों का त्याग करने की इच्छा नहीं थी। उन्हें आराम और सुविधा प्रिय थी और वे वहीं बने रहने में भली भांति संतुष्ट थे। उनका उदाहरण उन अन्य लोगों के लिए बाधा सिद्ध हुआ जो अन्यथा विश्वास से आगे बढ़ने वालों के साथ अपना भाग बांधने का चुनाव कर सकते थे। भविष्यद्वक्ता और राजा सच्चे दबाई।
547 ईसा पूर्व उस भविष्यवाणी की शुरुआत को भी दर्शाता है जो ये बताती है कि कब प्राचीन इसराइल को परमेश्वर द्वारा त्याग दिया जाएगा और सुसमाचार अन्य जातियों के पास ले जाया जाएगा, जो प्राचीन इसराइल के लिए 290 वर्षों के विशेष प्रकेश टाइम कैफ इंकित आई गो When Ketiva Bada 500-709 is this perso utters, Kano Inketa Yigo, or Feri Tursiswi, when Ketiva Bada utters perso, Jo Yesen Ketkarta hai, ki Advent Wad Kava Vachavaniki, Utzenai Marshonke Anomber Findes, Masawain Ketai, or Ravivar, Lagbag Poratumba Varshonke Entko Samaptoga.
तीसरा वर्षीय भविष्य भव्यातिवाणी में कुछ अन्य अंतर्निहित समय संबंधी भविष्यवाणियां भी हैं, लेकिन उन सब में अल्फा और ओमेगा की छाप है। उनकी शुरुआतें उनके अंत को दर्शाती हैं।
ये ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन इसराइल को परमेश्वर की व्यवस्था का संरक्षक बनाया गया था और आधुनिक इसराइल को न केवल उसकी व्यवस्था का बल्कि उसकी भविष्यवाणियों का भी संरक्षक बनाया गया। जब प्रभु ने प्राचीन इसराइल के साथ वाचा बांधी तो उसने उन्हें पत्थर की दो पट्टिकाओं पर लिखी 10 आज्ञाओं के संरक्षक बनाया। जब उसने मिल्रवादी इतिहास में आधुनिक इज़राइल के साथ वाचा बांधी तो उसने उन्हें अपने भविष्यवाणी के वचन का संरक्षक बनाया, जो हबक्कूक की दो पट्टिकाओं पर दर्शाया गया है, जैसा कि 1843 और 1850 के अग्रदूत चार्टों में प्रस्तुत है। प्राचीन इज़राइल की शुरुआत आधुनिक इज़राइल की शुरुआत को दर्शाती है।
प्रभु ने अपनी प्रजा इज़राइल को बुलाया और उन्हें संसार से अलग किया ताकि वो उनके सुपुर्द एक पवित्र धरोहर सौंप सके। उसने उन्हें अपनी व्यवस्था के भंडारी ठहराया और ये ठहराया कि उनके द्वारा मनुष्यों में अपने विषय का ज्ञान बना रहे, उनके माध्यम से स्वर्ग का प्रकाश पृथ्वी के अंधकारमय स्थानों में प्रकाशित होना था और एक पुकार सुनाई देनी थी जो सब जातियों से ये आग्रह करे कि वे अपनी मूर्ति पूजा से फिरकर जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें। यदि इब्रानी अपने सौंपे गए दायित्व के प्रति निष्ठावान रहे होते तो वे संसार में एक शक्ति बन गए होते। परमेश्वर उनका रक्षक होता और वो उन्हें अन्य सब जातियों से ऊपर उठाता। उसकी सामर्थ्य और सत्य उनके द्वारा प्रकट होते और उसकी बुद्धिमान व पवित्र शासन व्यवस्था के अधीन वे मूर्ति पूजा के हर रूप पर उसके राज्य की श्रेष्ठता का उदाहरण बनकर सामने आते। परंतु उन्होंने परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को नहीं निभाया। वे अन्य जातियों की मूर्ति पूजक प्रथाओं के पीछे चल पड़े और पृथ्वी पर अपने सृष्टिकर्ता के नाम को प्रशंसा का विषय बनाने के बजाय उन्होंने उसे तिरस्कार में ला दिया।
फिर भी परमेश्वर की योजना पूरी होनी ही चाहिए। उसकी इच्छा का ज्ञान संसार को दिया जाना चाहिए। परमेश्वर ने अपने लोगों पर उत्पीड़न की मार ला दी और उन्हें बंदियों के समान जातियों के बीच तितर बितर कर दिया। क्लेश में उनमें से बहुतों ने अपने अपराधों पर पश्चाताप किया और प्रभु की खोज की। इस प्रकार अन्य जातियों के देशों में तितर बितर होकर उन्होंने सच्चे परमेश्वर के ज्ञान का प्रसार किया। आज के समय में परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को, जैसे उसने प्राचीन इसराइल को बुलाया था, पृथ्वी पर एक प्रकाश के रूप में खड़े होने के लिए बुलाया है। सत्य की शक्तिशाली कुल्हाड़ी पहले, दूसरे और तीसरे स्वर्गदूत के संदेशों के द्वारा उसने कलीसियाओं और संसार से एक प्रजा को अलग कर लिया है ताकि उन्हें अपने साथ पवित्र निकटता में ले आए। उसने उन्हें अपनी व्यवस्था के भंडारी बना दिया है और इस समय की भविष्यवाणी के महान सत्यों को उन्हें सौंप दिया है। जैसे पवित्र वचन प्राचीन इसराइल को सौंपे गए थे, वैसे ही ये भी संसार तक पहुंचाए जाने के लिए एक पवित्र न्यास है। भविष्यवाणी घोषित करती है कि पहला स्वर्गदूत अपनी घोषणा हर एक राष्ट्र और कुल और भाषा और लोगों को करेगा। तीसरे स्वर्गदूत की चेतावनी, जो उसी त्रिगुना संदेश का एक भाग है और इस समय के लिए संदेश है, उतनी ही व्यापक होगी। जिस ध्वज पर परमेश्वर की आज्ञाएं और यीशु का विश्वास अंकित है, उसे ऊंचा उठाया जाना है। पहले और दूसरे संदेश की शक्ति तीसरे में और अधिक प्रबल की जाएगी। भविष्यवाणी में इसे इस प्रकार दर्शाया गया है कि आकाश के मध्य में उड़ता हुआ एक स्वर्गदूत ऊंचे स्वर में इसे घोषित करता है और ये संसार का ध्यान आकर्षित करेगा। नश्वर मनुष्यों को कभी दी गई सबसे भयावह धमकी तीसरे स्वर्गदूत के संदेश में निहित है। वो अवश्य ही भयानक पाप होगा जो परमेश्वर के दया रहित क्रोध को बुला लाता है, परंतु इस महत्वपूर्ण विषय के विषय में मनुष्यों को अंधकार में नहीं छोड़ा गया है। पशु और उसकी प्रतिमा की उपासना के विरुद्ध चेतावनी परमेश्वर के न्याय के आगमन से पहले संसार को दी जानी है, ताकि सब जान लें कि ये न्याय क्यों लागू किए जा रहे हैं और बच निकलने का अवसर प्राप्त कर सकें। साइंस ऑफ द टाइम्स, 25 जनवरी 31।
हबक्कूक अध्याय 2 की पूर्ति में दो पट्टिकाओं का निर्माण कई भविष्यवाणियों की पूर्ति था।
मैं अपनी पहरेदारी पर खड़ा रहूंगा और मीनार पर अपने को स्थापित करूंगा और ये देखने के लिए चौकसी करूंगा कि वो मुझसे क्या कहेगा, और जब मुझे ताड़ना दी जाए तो मैं क्या उत्तर दूंगा। और प्रभु ने मुझे उत्तर दिया और कहा, दर्शन लिख और उसे पट्टिकाओं पर स्पष्ट कर दे, ताकि जो इसे पढ़े वो दौड़ सके, क्योंकि ये दर्शन अभी एक नियत समय के लिए है, परंतु अंत में ये बोलेगा और झूठ न बोलेगा। चाहे ये विलंब करे, उसकी प्रतीक्षा करना, क्योंकि वो निश्चय ही आएगा, वो विलंब न करेगा। देखो, जो घमंडी है उसका मन उसके भीतर सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। हबक्कूक 2:1-4।
1843 के अग्रणी चार्ट और 1850 के अग्रणी चार्ट दोनों का निर्माण भविष्यवाणी की पूर्ति था।
हबक्कूक की तालिकाओं का अध्ययन इसका पर्याप्त प्रमाण प्रदान करता है। परंतु हबक्कूक में दिया गया ये अंश हमारी चर्चा के इस बिंदु के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है।
मैंने देखा है कि 1843 का चार्ट प्रभु के हाथ से निर्देशित था और कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, कि संख्याएं वैसी ही थीं जैसी वे चाहते थे, कि उनका हाथ उन पर था और कुछ संख्याओं में एक त्रुटि को इस प्रकार छिपाए हुए था कि कोई उसे देख न सके जब तक उनका हाथ हटाया नहीं गया। अर्ली राइटिंग्स 56 शप्तरफी
1843 के बाद प्रभु ने एक और चार्ट बनाने का निर्देश दिया, परंतु पहले 1843 चार्ट में प्रेरणा के अतिरिक्त कोई परिवर्तन न किया जाए।
मैंने देखा कि सत्य को तालिकाओं पर स्पष्ट किया जाना चाहिए कि पृथ्वी और उसकी संपूर्णता प्रभु की है और इसे स्पष्ट करने के लिए आवश्यक साधनों में कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। मैंने देखा कि पुराना चार्ट प्रभु द्वारा निर्देशित था और कि उसके किसी भी अंक को प्रेरणा के बिना बदला नहीं जाना चाहिए। मैंने देखा कि चार्ट के अंक वैसे ही थे जैसे परमेश्वर उन्हें चाहते थे और कि उसका हाथ उन पर था और उसने कुछ अंकों में एक भूल को छिपा दिया था ताकि जब तक उसका हाथ हटाया न जाए कोई उसे न देख सके। स्पॉल्डिंग एंड मैगन 2।
जब बहन व्हाइट बाई निकोल्स, जिन्होंने 1850 का चार्ट तैयार किया के साथ रह रही थीं और वे उस चार्ट को बना रहे थे, तब बहन व्हाइट ने कहा कि उन्होंने बाइबल में 1850 का चार्ट देखा था।
मैंने देखा कि भाई निकोल्स द्वारा चार्ट के प्रकाशन में परमेश्वर का हाथ था। मैंने देखा कि इस चार्ट के बारे में बाइबल में एक भविष्यवाणी थी और यदि ये चार्ट परमेश्वर की प्रजा के लिए बनाया गया है, यदि ये एक के लिए पर्याप्त है तो ये दूसरे के लिए भी पर्याप्त है, और यदि किसी एक को बड़े पैमाने पर चित्रित एक नए चार्ट की आवश्यकता थी तो सबको उसकी उतनी ही आवश्यकता है। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेस खंड 13 थे 9।
हबक्कूक ने आज्ञा दी, दर्शन लिखो और उसे पट्टिकाओं पर स्पष्ट कर दो। हबक्कूक की वे दो पट्टिकाएं उस वाचा का प्रतीक थीं जो परमेश्वर ने एडवेंटिज्म के साथ की जब उसने उन्हें अपनी भविष्यवाणियों के अभिरक्षकों के रूप में नियुक्त किया, ठीक उसी प्रकार जैसे उसने प्राचीन इसराइल के साथ वाचा बांधी और उसे व्यवस्था की दो पट्टिकाएं तथा व्यवस्था के अभिरक्षक होने की जिम्मेदारी सौंपी। परंतु हबक्कूक उन पट्टिकाओं के संबंध में उपासकों के दो वर्गों की पहचान करता है जिनसे दर्शन स्पष्ट होना था। एक वर्ग उन लोगों का है जिनकी आत्मा ऊंची हो गई है और जो सीधे नहीं हैं, और दूसरा वर्ग धर्मी कहलाता है जो अपने विश्वास से जीवित रहेगा। हबक्कूक का संदर्भ यह बताता है कि जो धर्मी ठहराए गए हैं वे भविष्यवाणी के वचन पर आधारित उस विश्वास से जीवित हैं जैसा कि दो पट्टिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। इसलिए जो धर्मी नहीं ठहराए गए हैं उन्होंने एडवेंटवाद की शुरुआत को अस्वीकार कर दिया है। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वो उस अंश पर आधारित है जिस पर हमने कुछ समय पहले विचार किया था। उसमें लिखा है,
परंतु पवित्र स्थान 2300 दिनों के संबंध में परमेश्वर की आज्ञाएं और यीशु का विश्वास जैसे विषय भूतकाल के एडवेंट आंदोलन की व्याख्या करने और ये दिखाने के लिए कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, संदेह करने वालों के विश्वास को दृढ़ करने और महिमामय भविष्य के विषय में निश्चितता देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। ये जैसा कि मैंने अक्सर देखा है वे प्रमुख विषय थे जिन पर संदेशवाहकों को विस्तार से बोलना चाहिए। प्रारंभिक लेखन 3।
हमने अभी अभी इन चारों सत्यों की समीक्षा की है, पवित्र स्थान, दी 1700 दिन, परमेश्वर की आज्ञाएं और यीशु का विश्वास। हमने इन चारों सत्यों को उस सत्य के ढांचे में रखा है जिसे अतीत के एडवेंट आंदोलन की व्याख्या करने और हमारी वर्तमान स्थिति क्या है ये दिखाने के लिए पूर्णतः सुनियोजित किया गया है। वो ढांचा पहले उल्लेख का नियम है, वो अल्फा और ओमेगा का हस्ताक्षर है और वही सत्य का ढांचा है, क्योंकि सत्य शब्द में वही हस्ताक्षर निहित है जो उन चारों सत्यों में है जिन्हें वर्तमान सत्य के रूप में पहचाना जाता है जो एडवेंटवाद की शुरुआत को समझाने के लिए डिजाइन किया गया था। और कुछ नहीं तो इसका अर्थ ये है कि सत्य के रूप में अनुदित वो शब्द जिस पर हम विचार कर रहे हैं अनंत सुसमाचार का ढांचा है,
वही अंतिम चेतावनी के संदेश के लिए ढांचा है, वही तीसरे स्वर्गदूत के संदेश का ढांचा है और वही यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य का एक बड़ा हिस्सा है। अंतिम चेतावनी संदेश जो प्रकाशित वाक्य अध्याय एक की पहली तीन आयतों में यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य के रूप में प्रस्तुत है, उसकी दूसरी बार गवाही प्रकाशित वाक्य के अंत में दी गई है। प्रकाशित वाक्य का अंत पुराने नियम की प्रारंभिक आयतों और पुराने नियम की अंतिम आयतों के विषय में भी गवाही देता है। इन चार संदर्भों के साथ भविष्यद्वाणी की पंक्ति पर पंक्ति रखने के दिव्य नियम को लागू करके यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अंतिम चेतावनी संदेश सृष्टिकर्ता के अपनी सृष्टि के प्राणियों के साथ संबंध से संबंधित है, ये उसके सृजनात्मक सामर्थ्य से संबंधित है, ये इस बात से संबंधित है कि उसका सृजनात्मक सामर्थ्य उसकी कलीसिया तक कैसे संप्रेषित है, ये दिव्यता के उस गुण से संबंधित है जो अंत को आरंभ से जोड़ता है, ये एक संदेश है जो अनुग्रह काल के समापन से ठीक पहले आता है, और इससे भी अधिक जब इन्हें एक साथ देखा जाता है तो ये परमेश्वर के सृजनात्मक सामर्थ्य के विषय में है, और उसके सृजनात्मक सामर्थ्य का प्रथम उल्लेख उत्पत्ति अध्याय एक की शुरुआत में पहली आयत से लेकर दूसरे अध्याय की तीसरी आयत तक मिलता है।
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी निराकार और सूनी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधकार छाया हुआ था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, और ईश्वर ने कहा प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया, और ईश्वर ने देखा कि प्रकाश अच्छा है, और ईश्वर ने प्रकाश को अंधकार से अलग किया, और ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात रखा, और शाम और सुबह होकर पहला दिन हुआ। और परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक आकाशमंडल हो, और वो जल को जल से अलग करे। और परमेश्वर ने आकाशमंडल बनाया, और आकाशमंडल के नीचे के जल को आकाशमंडल के ऊपर के जल से अलग कर दिया, और ऐसा ही हुआ। और परमेश्वर ने आकाशमंडल का नाम आकाश रखा, और संध्या हुई, फिर प्रातः हुआ, दूसरा दिन हुआ। और परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे के जल एक स्थान में इकट्ठे हों, और सूखी भूमि प्रकट हो, और ऐसा ही हुआ। और परमेश्वर ने सूखी भूमि का नाम पृथ्वी रखा, और जो जल इकट्ठे हुए उन्हें उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। और परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से घास, बीज देने वाली वनस्पति और अपने अपने प्रकार के अनुसार फल देने वाले फलदार वृक्ष जिनका बीज उनके भीतर हो पृथ्वी पर उगे, और ऐसा ही हुआ। और पृथ्वी ने घास उगाई और अपने अपने प्रकार के अनुसार बीज देने वाली वनस्पतियां और अपने अपने प्रकार के अनुसार फल देने वाले वृक्ष जिनका बीज उनके भीतर था। और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। और संध्या हुई, फिर प्रातः हुआ, तीसरा दिन हुआ।
और परमेश्वर ने कहा आकाशमंडल में ज्योतियां हों जो दिन को रात से अलग करें, और वे चिह्नों के लिए और ऋतुओं के लिए और दिनों और वर्षों के लिए हों, और वे आकाशमंडल में ज्योतियां हों जो पृथ्वी पर प्रकाश दें, और ऐसा ही हुआ। और परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, बड़ी ज्योति दिन पर प्रभुत्व करे और छोटी ज्योति रात पर प्रभुत्व करे। उसने तारों को भी बनाया, और परमेश्वर ने उन्हें आकाशमंडल में स्थापित किया कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें और दिन और रात पर प्रभुत्व करें और प्रकाश को अंधकार से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। और सांझ हुई, फिर भोर हुई, चौथा दिन।
और परमेश्वर ने कहा जल बहुतायत से ऐसे चलायमान प्राणियों को उत्पन्न करें जिनमें जीवन हो, और पृथ्वी के ऊपर आकाशमंडल के खुले विस्तार में उड़ने वाले पक्षी हों। और परमेश्वर ने बड़े समुद्री जीव और हर जीवित प्राणी जो चलता फिरता है, जिन्हें जल ने अपनी अपनी जाति के अनुसार बहुतायत से उत्पन्न किया, और हर प्रकार के पंखदार पक्षी अपनी अपनी जाति के अनुसार बनाए। और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा था। और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी ये कहते हुए फलो फूलो और बढ़ो, और समुद्रों के जल को भर दो, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ते जाएं। और परेशवा दिन, संध्या हुई और भोर हुई, पांचवां दिन।
और परमेश्वर ने कहा पृथ्वी अपने अपने प्रकार के जीवधारी उत्पन्न करे, अर्थात पालतू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन्य पशु अपने अपने प्रकार के। और ऐसा ही हुआ, और परमेश्वर ने पृथ्वी के वन्य पशु उनके उनके प्रकार के और पालतू पशु उनके उनके प्रकार के और पृथ्वी पर रेंगने वाले हर एक जंतु उनके उनके प्रकार के बनाए। और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। और परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, पशुओं पर, सारी पृथ्वी पर और पृथ्वी पर रेंगने वाले हर एक जंतु पर अधिकार रखे। सो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में सृजा, परमेश्वर के स्वरूप में उसने उसे सृजा, नर और नारी करके उसने उन्हें सृजा। और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और बढ़ो और पृथ्वी को भर दो और उसे वश में करो, और समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले हर एक जीवित प्राणी पर प्रभुता करो। और परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने तुम्हें पृथ्वी के ऊपर हर एक बीज वाली वनस्पति और हर एक वृक्ष जिसके फल में बीज है दिए हैं, ये तुम्हारे भोजन के लिए होंगे। और पृथ्वी के हर एक पशु को और आकाश के हर एक पक्षी को और पृथ्वी पर रेंगने वाले हर एक जंतु को जिसमें जीवन है, मैंने हर एक हरी वनस्पति भोजन के लिए दी है। और ऐसा ही हुआ। और परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब देखा, और देखो वो बहुत ही अच्छा था। और संध्या हुई और प्रातःकाल हुआ, छठा दिन। इस प्रकार आकाश और पृथ्वी और उन सब की समस्त सेना पूरी हो गई। और सातवें दिन परमेश्वर ने अपनी उस सारी रचना का काम जो वो कर चुका था समाप्त किया, और सातवें दिन वो अपने उस सब काम से जो उसने किया था विश्राम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपने उस सब काम से जिसे परमेश्वर ने सृजा और बनाया था विश्राम किया। उत्पत्ति 1:2-3।
पिछले पद सृष्टि की पूरी गवाही का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये रेखांकित करते हुए कि ईश्वर के वचन में सृजनात्मक शक्ति है।
समस्त पृथ्वी प्रभु का भय माने, समस्त जगत के निवासी उसके प्रति भय भक्ति से ठहरें, क्योंकि उसने कहा और वो हो गया, उसने आज्ञा दी और वो दृढ़ हो गया। भजन संहिता 33:8-9।
जिस सृजनात्मक शक्ति ने संसार की रचना की, वही शक्ति मसीह मनुष्यों को रूपांतरित करने के लिए प्रयोग करते हैं।
वो सृजनात्मक शक्ति जिसने संसारों को अस्तित्व में लाया, वो परमेश्वर के वचन में है। ये वचन सामर्थ्य प्रदान करता है, ये जीवन को जन्म देता है। प्रत्येक आज्ञा एक प्रतिज्ञा है, इच्छा से स्वीकार की गई और आत्मा में ग्रहण की गई। ये अपने साथ अनंत परमेश्वर का जीवन ले आती है, ये स्वभाव को रूपांतरित करती है और आत्मा को परमेश्वर की छवि में पुनः रचती है। जो जीवन इस प्रकार दिया गया है वह उसी प्रकार पोषित किया जाता है। परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से मनुष्य जीवित रहेगा। मत्ती 4:5 शिक्षा 10:6।
यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य इस बात पर बल देता है कि परमेश्वर का वचन मनुष्यों तक कैसे पहुंचाया जाता है। ये पिता से पुत्र के पास, फिर एक स्वर्गदूत के पास और वहां से एक भविष्यद्वक्ता के पास आता है जो इसे लिखता है और कलीसियाओं को भेज देता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की शुरुआत और अंत में दर्शाया गया ये संप्रेषण क्रम याकूब की सीढ़ी द्वारा भी चित्रित है, जिसमें स्वर्गदूत सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं और नीचे उतरते हैं। ये जकरयाह की दो सुनहरी नलिकाओं द्वारा भी दिखाया गया है जो तेल को पवित्र स्थान में पहुंचाती हैं। परमेश्वर और मनुष्य के बीच का ये संप्रेषण क्रम बाइबल की भविष्यवाणी का विषय है, और जो संदेश भेजा जाता है उसमें वही सृजनात्मक शक्ति निहित है जिसने ब्रह्मांड की रचना की। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में वर्णित इस संप्रेषण क्रम में ये समझना चाहिए कि कलीसियाओं को सौंपा गया संदेश एक लौदीकियाई को फिलाडेल्फियाई में रूपांतरित करने की शक्ति रखता है। चाहे हम पुराने नियम या नए नियम की शुरुआत पर विचार करें या उनके अंत पर, संदेश एक ही है। ईश्वर अंतिम चेतावनी का संदेश दे रहे हैं, और यदि इसे सुनने वाले इसे सुनकर उसका पालन करें तो उसमें ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति निहित होती है। ये संदेश जो ये कार्य पूरा करता है, अल्फा और ओमेगा, आरंभ, मध्य और अंत
की दैवी रूपरेखा के भीतर स्थित है। जो तीन इब्रानी अक्षर मिलकर सत्य शब्द बनाते हैं वे ही अनंत सुसमाचार हैं, और वे अक्षर तथा उनके अर्थ तथा जब वे मिलकर जो शब्द उत्पन्न करते हैं वो उस सिद्धांत का भी प्रतीक है और उस एक का भी जो अल्फा और ओमेगा है। ये उसकी सृजनात्मक शक्ति पर बल देता है। सृष्टि सृपन्नन के अंतिम तीन शब्दों में से प्रत्येक उसी क्रम में उन तीन अक्षरों से आरंभ होता है जो सत्य शब्द बनाते हैं।
सृष्टि वृत्तांत के अंत में आने वाले तीन शब्द उन तीन अक्षरों से आरंभ होते हैं जो मिलकर सत्य शब्द बनाते हैं। उस पद के अंतिम तीन शब्द क्रमशः अलेफ, मैम और तव अक्षरों से शुरू होते हैं। इन तीन शब्दों का अनुवाद ईश्वर, रचा और बनाया के रूप में किया जाता है। ये तीनों शब्द इसी क्रम में ए, अलेफ, मैम और तव से आरंभ होकर सृष्टि वृत्तांत की पूर्णता और क्रमबद्धता को और भी रेखांकित करते हैं। इस पैटर्न का यहूदी भाष्यकारों ने इब्रानी पाठ की एक रोचक भाषाई विशेषता के रूप में उल्लेख किया है। सृष्टि की कथा आदि में शब्दों से आरंभ होती है और तीन ऐसे शब्दों के साथ समाप्त होती है जो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, प्रथम और अंतिम का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्पत्ति की गवाही में चित्रित सृजनात्मक शक्ति का प्रारंभ और अंत उस अद्भुत भाषाविद के हस्ताक्षर से होता है।
किसी बात का प्रथम भाग उसी बात के अंतिम भाग का चित्रण करता है। इसी पर भविष्यद्वक्ता यूहन्ना ने जोर दिया जब वे उस समय जो था उसे लिखते हुए उसी समय जो होने वाला था उसे भी लिख रहे थे। पुराने नियम के अंत में वर्णित एलिया का अंतिम चेतावनी संदेश रविवार कानून के संकट और आसन्न अंतिम सात विपत्तियों के संदर्भ में उसी भविष्यवाणी के सिद्धांत की पहचान करता है। प्रथम उल्लेख का नियम और जो कुछ वो दर्शाता है वही वो ढांचा है जिसके भीतर वर्तमान सत्य को रखा जाना है। वो ढांचा प्रथम उल्लेख का नियम ही है जो कि ईश्वर के गुणों में से एक भी है।
दानियेल की पुस्तक जो एडवेंटवाद की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो एडवेंटवाद के अंत का प्रतिनिधित्व करती है को जब हम पहले द्वारा अंतिम का चित्रण करने के सिद्धांत के साथ देखते हैं तो हमें आश्चर्यजनक समानताएं मिलती हैं। दानियेल की पुस्तक यीशु का एक गुण प्रस्तुत करती है जब वो पाल्मोहेई नाम का प्रयोग करती है जिसका अर्थ है रहस्यों की अद्भुत गणना करने वाला। दानियेल यीशु को प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल के रूप में भी परिचित कराता है। यूहन्ना को भी दानियेल जैसा ही कार्य सौंपा गया है और वो उनकी पहचान न गणना के स्वामी, न स्वर्गदूतों के प्रधान, बल्कि भाषा के स्वामी के रूप में कराता है। जब हम यीशु को वर्णमाला के स्वामी के रूप में विचार करते हैं तो हमें भजन संहिता 191 पर ध्यान देना चाहिए जो बाइबल का सबसे लंबा अध्याय है।
भजन संहिता 192:1 वर्णक्रमिक अक्रोस्टिक है, अर्थात आठ पदों के हर समूह में सभी पदों का पहला अक्षर एक ही अक्षर होता है। हिब्रू वर्णमाला में 22 अक्षर होते हैं, इसलिए आठ पदों के 22 खंड हैं। प्रत्येक खंड वर्णमाला के क्रम के अनुसार उस अक्षर से शुरू होता है और फिर उस अक्षर को सौंपे गए आठों पद उसी अक्षर से आरंभ होते हैं। हर अक्षर के लिए आठ पद हैं। इस प्रकार हिब्रू वर्णमाला के 22 अक्षरों के साथ आठ पद गुणा करने पर कुल 176 पंक्तियां होती हैं। ये भजन ऐसे परमेश्वर की आज्ञाकारिता पर बल देता है जो व्यवस्था के परमेश्वर है, इसीलिए ये अक्रोस्टिक संरचना है न कि अराजकता के।
भजन संहिता 101 का नव्य का एक और प्रमुख विषय ये गहन सत्य है कि परमेश्वर का वचन सर्वथा पर्याप्त है। इस पूरे भजन में परमेश्वर के वचन के लिए आठ अलग अलग शब्द प्रयुक्त हुए हैं: व्यवस्था, साक्ष्य, उपदेश, विधियां, आज्ञाएं, निर्णय, वचन और विधान। लगभग हर पद में परमेश्वर के वचन का उल्लेख है। भजन संहिता 101 कनव्य का न केवल पवित्र शास्त्र के स्वरूप की पुष्टि करता है बल्कि ये भी घोषित करता है कि परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर के ही चरित्र को प्रतिबिंबित करता है। भजन संहिता 1 कनव्य का प्रस्तुत परमेश्वर के इन गुणों पर ध्यान दे।
धर्म पद 7 सात्यान 95 सत्तर्रा 106 123 130 144 160 146
172 विश्वसनीयता श्लोक 45 सत्यनिष्ठा श्लोक 43 मई 42 51 63 निष्ठा पद 83 अपरिवर्तनशीलता श्लोक 89 शाश्वतता पद्य 90 1550 प्रकाश श्लोक 50 शुद्धता श्लोक 85 ये भजन दो धन्य कथनों से आरंभ होता है। धन्य है वे जिनका मार्ग निर्दोष है, जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, जो उसकी विधियों का पालन करते हैं और पूरे हृदय से उसकी खोज करते हैं। इस महान भजन में हमारे लिए यह शिक्षाएं हैं। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाने, धर्म में प्रशिक्षण देने और हर एक भले कार्य के लिए हमें सुसज्जित करने को पर्याप्त है। 2 तीमुथियुस 3:15-17 बेशक भजन संहिता 15:101 एक ऐसे विषय का हिस्सा है जो धार्मिक सिलग में काफी हद तक अनसुलझा है। ये बात से संबंधित है कि बाइबल की मध्य आयत कौन सी है और बाइबल का मध्य अध्याय कौन सा है। यदि आप इंटरनेट पर खोजेंगे तो आपको अलग अलग दलीलें मिलेंगी जो इस बात पर केंद्रित हैं कि आप कौन सी बाइबल उपयोग करते हैं इत्यादि। इस बहस में हर पक्ष की समस्या ये है कि बाइबल के मध्य की परिभाषा, चाहे वो किसी आयत की हो या किसी अध्याय की, बाइबल के लेखक द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, न कि बाइबल के मानव छात्र या आलोचक द्वारा। बाइबल सिखाती है कि हर चीज की एक शुरुआत और एक अंत होता है, हर चीज का एक समय होता है।
हर बात का एक समय है और आकाश के नीचे हर काम का एक समय है, जन्म का समय और मरने का समय, रूपने का समय और जो रोपा गया है उसे उखाड़ने का समय। सभोपदेशक 3:6-2
जन्म का एक समय होता है और मृत्यु का भी, लेकिन हमारे जीवन की शुरुआत और अंत के बीच जो कुछ घटित होता है वही जीवन है। जन्म समय का एक क्षण भर का पल है, मृत्यु भी वैसी ही है। जीवन बीच का हिस्सा है और आम तौर पर उसमें हमारे जन्म और मृत्यु के समय की तुलना में कहीं अधिक इतिहास जुड़ा होता है। प्रथम उल्लेख के नियम में मध्य के बारे में सामान्यतः प्रारंभ और अंत की तुलना में कहीं अधिक गवाही मिलती है। बाइबल में किसी एक पद या अध्याय को खोजकर उसे मध्य ठहराना बाइबलीय साक्ष्यों की अनदेखी करना है, भले ही प्रारंभ और अंत मूलतः समय के बिंदु हों। मध्य सामान्यतः एक कालावधि होता है। निस्संदेह प्रारंभ, अंत और मध्य आपस में संगत होंगे, हालांकि अक्सर अंत में वही मार्ग चिन्ह प्रारंभ के विपरीत होता है। यीशु ने योहन बपतिस्मा देने वाले को एलिया के रूप में पहचाना और दोनों एक ही भविष्य सूचक घटनाक्रम को दर्शाते हैं, परंतु एलिया को एक दुष्ट स्त्री ईजेबेल ने सताया जो उसे कैद करने और मार डालने की कोशिश करती रही, पर वो ऐसा कभी कर नहीं पाई। एलिया के प्रतीक के रूप में योहन को एक दुष्ट स्त्री हिरोदियास ने कैद कराकर मार डालने की कोशिश की और वो सफल हुई। एलिया और योहन परस्पर विनिमेय प्रतीक हैं, पर उनके कुछ भविष्य सूचक लक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, फिर भी वे एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। एलिया नहीं मरा पर योहन मरा, ये समझना कि जो भविष्य सूचक मार्ग चिन्ह लेख एक दूसरे से मेल खाते हैं वे अक्सर परस्पर विरोधी भी होते हैं, उन लोगों को ये देखने में सहायता देता है कि बाइबल का मध्य अध्याय भजन संहिता 118 है। जब हम पहले उल्लेख के नियम के सिद्धांत का उपयोग करते हैं, जैसा कि हम इसे परिभाषित करते आ रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि बाइबल के मध्य की शुरुआत भजन संहिता 117 से होती है, जो बाइबल का सबसे छोटा अध्याय है और 2 पदों से बना है। इसके बाद अध्याय 118 आता है जो बाइबल का मध्य है, और अध्याय 118 के बाद 119 आता है जो बाइबल का सबसे लंबा अध्याय है और बाइबल के मध्य का समापन है। वो अद्भुत भाषाविद शुरुआत को सबसे छोटे अध्याय से चिन्हित करता है, फिर अंत को सबसे लंबे अध्याय से चिन्हित करता है। वे 2 परस्पर विपरीत अध्याय हैं। शुरुआत बीज है और अंत वो स्थान है जहां पूर्ण रूप से परिपक्व पौधा विकसित होता है, जहां मध्य में स्थित सारी गवाहियां एक साथ बन जाती हैं। भजन संहिता 117 पर ध्यान दें।
हे सब जातियों प्रभु की स्तुति करो, हे सब लोगों उसकी स्तुति करो,
क्योंकि हम पर उसकी करुणा महान है और प्रभु का सत्य सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु की स्तुति करो। भजन संहिता 171:2।
जिस शब्द पर हम विचार कर रहे हैं वो तीन अक्षरों से बना है। दूसरी आयत में उसका अनुवाद सत्य के रूप में किया गया है और वो बाइबल के मध्य के आरंभ का प्रतिनिधित्व करता है। बाइबल का मध्य भजन संहिता 1797 तक 1797 है। मध्य का अंत भजन संहिता 1797 है। भजन संहिता 1700 मध्य का मध्य है। भजन संहिता 1700 बाइबल के सबसे छोटे और सबसे लंबे अध्यायों के बीच स्थित है और सबसे छोटा जो आरंभ है सत्य शब्द प्रस्तुत करता है जो तीन अक्षरों से बना है। ये तीन अक्षर अनंत सुसमाचार के तीन चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सत्य को समझने की रूपरेखा है। ये रूपरेखा वो सिद्धांत है जो मसीह के चरित्र को अल्फा और ओमेगा के रूप में दर्शाती है। मध्य का समापन अर्थात अध्याय 101 बाज एक वर्णक्रमिक अक्रोस्टिक है जो बाइबल के मध्य में रखा गया है और अद्भुत भाषाविद पर जोर देता है। अध्याय 101 बाज में चार बार वही शब्द सत्य के रूप में अनुवादित किया गया है।
और सत्य का वचन मेरे मुख से सर्वथा न छीन, क्योंकि मैंने तेरे न्यायों पर आशा रखी है। पद 43। तेरी धार्मिकता सदा की धार्मिकता है और तेरी व्यवस्था सत्य है। पद 142। हे प्रभु, तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य हैं। पद 150। तेरा वचन आदि से ही सत्य है और तेरे धर्ममय न्यायों में से प्रत्येक सदैव स्थिर रहता है। पद 157।
इन पदों में निहित सत्य बाइबल की भविष्यवाणी का वो नियम है जो आरंभ से ही अंत की पहचान कराता है। और इन पदों का सत्य ये है कि अल्फा और ओमेगा ने बाइबल के मध्य भाग पर भी अपना हस्ताक्षर रखा है, जैसा उसने आरंभ और अंत पर किया है। पहला और अंतिम का ये हस्ताक्षर तीसरे स्वर्गदूत के अंतिम चेतावनी संदेश को प्रस्तुत करने का ढांचा है। मध्य खंड के अंतिम भाग में चार पद सम्मिलित हैं जिनमें उस शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अनुवाद सत्य किया गया है, हालांकि चौथे संदर्भ का अनुवाद केवल सच्चा किया गया है। उन चार पदों में से सबसे अंतिम ये बताता है कि आरंभ से वचन सच्चा है। उत्पत्ति के अध्याय 1 और 2 के सृष्टि वृत्तांत में सत्य शब्द भले सीधे लिखा न गया हो, वह सृष्टि वृत्तांत के अंतिम तीन शब्दों में प्रकट होता है, क्योंकि उन तीनों शब्दों का पहला अक्षर क्रमशः मिलकर सत्य शब्द बनाते हैं। आदि में वचन था और उसी के द्वारा सब वस्तुएं सृजी गईं, और उत्पत्ति में सृष्टि की गवाही आदि में शब्दों से आरंभ होती है और तीन शब्दों पर समाप्त होती है, जो मसीह के सिज्ञ गुण से संबंधित सत्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे यशाया में इस प्रमाण के रूप में परिभाषित किया गया है कि वही एकमात्र परमेश्वर है। बाइबल का मध्य भजन संहिता अखंडता 1900 अध्याय अखंडता में सत्य शब्द के प्रयोग के माध्यम से इस सत्य का संदर्भ देकर शुरू होता है कि आरंभ अंत का प्रतिनिधित्व करता है। ये शब्द तीन अक्षरों से बना है जो अनंत सुसमाचार और तीन स्वर्गदूतों के संदेशों का प्रतीक है और सृष्टि की कथा के अंत की पहचान कराते हैं। बाइबल के मध्य भाग का अंत उस वर्णमाला की प्रस्तुति है जिसे उस अद्भुत भाषाविद ने इसलिए रचा कि ये समझ स्थापित हो कि उसके चरित्र के विषय में अब जो प्रकट किया जा रहा है वो प्रकाशन शब्द की परिभाषा के अनुरूप है, क्योंकि यीशु मसीह का प्रकाशन ऐसा संदेश है जिसे मसीह के चरित्र के उस पहलू को प्रस्तुत करने के लिए रचा गया है, जिसे अब तक यदि कभी पूरी तरह पहचाना नहीं गया। ये प्रकाशन वाचा इतिहास की रेखाओं के अनुरूप है, क्योंकि वाचा इतिहास में इस बात के प्रमाण हैं कि जैसे जैसे उसकी कथा आगे बढ़ती गई, परमेश्वर ने अपने नामों के माध्यम से अपने आप को प्रकट करने का प्रयास किया।
व्यवस्था के महान सिद्धांत जो स्वयं परमेश्वर के स्वभाव के हैं, पर्वत पर मसीह के वचनों में समाहित हैं। जो कोई उन पर निर्माण करता है वो मसीह युगों की चट्टान पर निर्माण करता है। वचन को ग्रहण करने में हम मसीह को ग्रहण करते हैं, और केवल वे ही जो इस प्रकार उसके वचनों को ग्रहण करते हैं उसी पर निर्माण कर रहे हैं। उस नींव के सिवाय और कोई नींव मनुष्य नहीं रख सकता जो रखी जा चुकी है, अर्थात यीशु मसीह। 1 कुरिन्थियों 3:11। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलना आवश्यक है। प्रेरितों के काम 4:12। मसीह, वचन परमेश्वर का प्रकाशन, उसके चरित्र, उसकी व्यवस्था, उसके प्रेम, उसके जीवन की अभिव्यक्ति, वही एकमात्र नींव है जिस पर हम ऐसा चरित्र बना सकते हैं जो स्थायी रहेगा। माउंट ऑफ ब्लेसिंग्स, मोर एठापोयना।
निस्संदेह इस सत्य के बारे में चर्चा करने को अभी बहुत कुछ है, लेकिन हम यहीं विराम देंगे।